Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama. Hare Hare. Namaha Om Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale.
Krishna Prasthaya Bhutale.
Srimate Bhakti Vedanta.
Srimate Bhakti Vedanta.
Swaminiti Namine.
Swaminiti Namine.
Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine.
Gauravani Pracharine.
Nirvisesha Shunyavade.
Nirvisesha Shunyavade.
Paschata Deshatarine.
Paschata Deshatarine.
Gaurave Gaurachandraya.
Gaurave Gaurachandraya.
Radhika Tadalyaye.
Radhika Tadalyaye.
Krishnaya Krishna Bhaktaya.
Krishnaya
Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya.
Krishnaya Vasudevaya.
Devaki Nandanaya cha.
Devaki Nandanaya cha.
Nanda Gopa Kumaraya.
Nanda Gopa Kumaraya.
Govindaya Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya.
Namo Mahavadanyaya.
Krishna Prema Pradayate.
Krishna Prema Pradayate.
Krishnaya Krishna Chaitanya.
Krishnaya Krishna Chaitanya.
Dhamani Gauratvishe Namaha.
Dhamani Gauratvishe Namaha.
Jai Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda.
Prabhu Nityananda.
Shri Advaita Gadadhara.
Shri Advaita Gadadhara.
Shivas Adigaura Bhakta Vrinda.
Shivas Adigaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Sri Radha Radhika Raman, Sri Krishna Balram. Mandir Skan, Punjabi Bagh mein. Kartik Damodhar Mahine ke. बहुला अष्टमी के पावन दिवस पे प्रातः सत्संग में आप सबका स्वागत है। कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को, जन्म अष्टमी, राधा रानी भी अष्टमी को, राधा कुंड भी अष्टमी को, तो ये कार्तिक महीने की अष्टमी को आज के दिन गौलोक धाम में राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम का जो हृदय को द्रवित करने वाला है और स्वयं राधा और कृष्ण तरल हो गए, लिक्विडिफाइड हो गए, आंसू प्रेम के इतने बहे कि दो अद्भुत कुंड गोलोक धाम में उनके परस्पर प्रेम से बन गए। और जब एक दिन ब्रह्मा जी के मैं 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में, ये आदि पुराण के अंदर इसका वर्णन है कि राधा कुंड का राधा रानी के प्रेम अश्रुओं से और श्याम कुंड गोविंद के प्रेम अश्रुओं से गोलोक धाम में प्रकट होता है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब एक बार धरती के ऊपर 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं तो ऊर्जेश्वरी श्री राधा को कहते हैं कि आप भौम वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन का ही इस धरती के ऊपर अवतरण है, नित्य लीला में विहार करने के लिए पधारिए। तब श्रीमती राधा रानी कहती है, जहां गोवर्धन, जहां जमुना, जहां राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब लीला स्त्रियां नहीं, वहां परस्पर आनंद और सुख कैसे उपलब्ध हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे लीला स्त्रियां पहले ही ब्रज में अवतरित हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं। वैसे बहुला एक राधा की सखी का नाम भी है, और वो इसी 12 वन में से 7 वन जमुना जी के पश्चिम तट पे हैं और 5 पूर्व तट पे हैं। तो पश्चिम तट पे जो 7 वन है उसमें से एक बहुला वन है, और बहुला वन के अंतर्गत ही राधा कुंड आता है। बहुला वन को आज बाती गांव के नाम से बाती गांव, बत्ती गांव ऐसे कहते हैं। तो यहां बहुला नाम की एक गोपी जो राधा रानी की सखी थी वहां रहा करती थी, तो उसका नाम बहुला वन हो गया। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण आदि में एक और कथा बहुला गाय की आती है, क्यों आज जहां बहुला वन है वहां संकृष्ण कुंड है, भगवान बहुला बिहारी का मंदिर है श्री कृष्ण का, एक वहां गौ माता है और एक वहां बाघ है, शेर है, मंदिर में स्थापित है शेर। आप लोग दर्शन करके आए उसका, बहुला वन में एक गाय है बहुला और एक शेर, वो दोनों वहां मंदिर में स्थापित हैं। तो पुराण में कथा ये आती है बहुला नाम की गाय, क्योंकि ये तो प्राचीन कथा बहुला की है ही, लेकिन बहुला नाम की गोपी तो बाद में 5000 वर्ष पहले कृष्ण लीला में राधा के संग आई, लेकिन बहुला नाम की गाय का वर्णन पुराणों व पद्म पुराण में भी है। तो सारी गैया चरती हुई इस कुंड में जल पी रही थी, तो एक शेर ने उसको घेर लिया। तो गैया ने कहा, शेर का भोजन तो है ही पशु, तो आप मुझे खा सकते हैं क्योंकि यह तो आपका अधिकार है। हम कभी कहते हैं शेर ने आज तक अपना भोजन बदला नहीं है, वो दाल चावल नहीं खाता है, लेकिन मानव बदमाश वो मांस खाने लगा। शेर ने अभी अपना भोजन नहीं बदला बेचारे ने, वो तो वही खाता है जो हमेशा खाता है, उसका अधिकार है, उसने नहीं बदला, इसलिए वो नाराज है, बोलता हमारा सब खा गए, हम क्या खाए। अन्याय है। तो गैया ने कहा कि सुबह से मैं चर रही हूं, घर में मेरा बछड़ा बेचारा बहुत भूखा है, मैं उसको दूध पिला के आती हूं, फिर आप मुझे खा लें। उस युग में शेर भी विश्वास करता था और गाय भी सची थी। ये उस युग की महिमा है। और शेर में विश्वास करिए, जाओ अपने बच्चे को दूध पिलाओ फिर आ जाना। भैया घर गई, बच्चे को कहती है बेटा आज जी भर के दूध पी लो, अब तो मैं शेर को वचन दे के आया हूं, वापस जाऊंगा उसका आहार है। बच्चा कहता है मां देखो तुम्हारे दूध से इस ब्राह्मण का पालन हो रहा है, आप ब्राह्मण के घर में गाय हो, मैं तो अभी किसी काम का हूं नहीं, बच्चा हूं, आप क्यों जाती हैं? मैं जाता हूं शेर के पास, आप यहां ब्राह्मण को सेवा करो, दूध दो, मैं आपकी जगह पे शेर को जाके दे दूंगा, मेरे क्या अभी मैं जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, किसी काम का हूं नहीं। तो गाय और बछड़ा ऐसे बात कर रहे थे तब तक ब्राह्मण ने सुन लिया। ब्राह्मण ने कहा इतनी देर इतने दिनों से आप मेरी सेवा कर रही हो, आप क्यों मरने दोनों चाहेंगे, मैं जाता हूं शेर मुझे खा ले। तीनों का आपस में परस्पर, अब इससे ऐसे लगता है कि गाय को पालन करने के लिए कितनी, जो गाय को पालन करता था वो मां की तरह उसके लिए, ब्राह्मण के मन में कि तो आप क्यों मरने जाओगे, मैं जाऊंगा। पहले गाय प्रेम से घर में बनती थी और कुत्ते गलियों में घूमते थे, अब कुत्ते बेडरूम में सोते हैं और गैया बाहर घूमती। कैसी परिस्थिति बिगड़ी है संस्कृति की, शेर विश्वास करता था और आजकल आदमी विश्वास नहीं करता। तीनों चले गए शेर के पास, वो कहता है मुझे खाओ, वो कहता है मुझे खाओ, वो कहता है मुझे खाओ, एक दूसरे से इतना प्रेम है, इसको कहते हैं परिवार जैसा हो गया। पशु भी घर में रहता है तो परिवार जैसा है, भगवान तो पशु पालक है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कृष्ण गौरक्ष आचार्य है और हमारा बलराम कृषि आचार्य है, ये दोनों आचार्य हैं इन दो कामों के। और गौ और कृषि ये वाणी ये वैश्य का कर्म है और वैश्य ही सारी एकानामी का आधार है, वो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, क्षत्रिय को टैक्स देता कर देता है और श्रमिक को तनखा देता है, वैश्य ही देता है, तीनों को सारी संस्कृति का पालन वो ही करता है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए उस कुंड पे और कृष्ण को देख के शेर के हृदय में दया आ गई, उन्होंने खाया किसी को नहीं। और एक पुराण में लिखा है कि वो धर्मराज था, परीक्षा ले रहा था गाय की। नारद ब्राह्मण था ऐसे, गाय और बछड़ा दो ऋषि थे ऐसे कुछ नाम और भी उसका उल्लेख है कहीं। तो उस बहुला गाय को शेर ने छोड़ दिया तो वो गाय और शेर उस मंदिर में स्थापित हैं। इसी बहुला कुंड में श्रीपाद वल्लभ आचार्य जो वल्लभ भट्ट के नाम से अरियल ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने निवास स्थान पे भोजन के लिए ले गए थे प्रयागराज से, ये चैतन्य चरितमृत में पूरी कथा है। प्रयागराज में वो जगह भी है, अरियल ग्राम तो मेरे को दूसरा नाम है उसका, नाम उधर ऐसा ही है, त्रिवेणी संगम से जमुना पार करके दूसरे तरफ जाते हैं जहां श्रीपाद वल्लभ आचार्य का घर था, वल्लभ भट्ट के नाम से उनका पुत्र बहुत बड़ा प्रसिद्ध बाद में जो गिरिरा जो जो गोपाल को यहां से नाथ द्वारा ले गए, विठल नाथ जी जो भगवान श्री गोपाल अभी नाथ द्वारे में विराजमान है, ये गिरिराज से विठल नाथ उनके पुत्र ले गए थे वहां। तो महाप्रभु को अपने चैतन्य महाप्रभु को अपने निवास स्थान पे भोजन के लिए ले गए थे, तब रूपक गोस्वामी साथ गया था। तो बहुत बड़ा सुंदर चैतन्य चरितमृत में उसका वर्णन है। सो उनकी उनकी एक बैठक भी वहां है, बैठक जहां जहां वल्लभाचार्य जी ने भागवत का तीन दिन में भागवत का पाठ करते थे, कंटिन्यूअस भागवत पढ़ते थे पूरी, जहां जहां उन्होंने पाठ किया उसको बैठक कहते। तो भारत में कोई मैं समझ 64 है या कुछ ऐसे कुछ इतनी बैठक है पूरे भारत में पैदल चल के उन्होंने भागवत का पाठ जगह जगह पे किया। उनकी टीका भी भागवत पे सुबोधनी नाम की है, बहुत अच्छी दसम स्कंद की टीका है। वो जब वहां भागवत पाठ करके रहे तो उस वक्त में तो ये तो 500 साल पहले मुस्लिम शासन था, तो गाय की पूजा करने शेर की पूजा करने से वहां का सूबेदार ने बंद करा दिया था कि तो बुत की पूजा मत करो मूर्ति की। तो गांव वालों ने बोला भाचार्य को कहा महाराज ये समस्या है, बोला बुलाओ सूबेदार को। सूबेदार आया, पंचायत सारी इकट्ठी हुई, ब्राह्मण जो भी ग्राम के थे। सूबेदार कहता ये गाय है तो ये घास खाएगी, इसके सामने दाना रखते हैं घास रखते हैं, खाएगी तो हम भी इसकी पूजा करेंगे। तो बोला भाचार्य ने कहा लाओ रखो घास और दाना, दाना उसके पीछे पीठ की तरफ रख दिया गाय के। साधु संत भगवान के प्यारे होते हैं, उन्होंने प्रार्थना की गाय माता अप्रत्यक्ष प्रमाण दो। वो गाय उस मूर्ति से निकल के घूम के और घास और दाना खाने लगी, और खाने लगी तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वो सूबेदार भी प्रणाम करके इसे कैसे होता है, तब से उसने कहा फिर इसको वहां स्थापित कर लो। तो ये वो अभी इच्छा करता है उधर जाकर देखना चाहिए किसी वक्त। ये राधाकुंड जाते हुए बीच बीच में से रास्ता अंदर जाता है, अंदर जाने का बहुला वन में वहां कुंड है संकर्षण, और चेतन महाप्रभु वहां बैठे थे और गाय और बछड़े आके उनके चाट रहे थे उनके चरणों को उसी क्षेत्र में। वहां ये ऐसी अद्भुत लीला है, महाप्रभु वहां बड़े प्रसन्न हुए थे इससे, क्योंकि राधाकुंड का क्षेत्र है पूरा बहुला, राधाकुंड बहुलावन क्षेत्र में ही आता है। सो ये तो पुराणिक कथा है, तत्कालीन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला के अंतर्गत भगवान ने वृंदावन से मथुरा जाने से पहले विशेष रूप से तीन असुरों का संहार किया। एक केसी, एक अरिष्टासुर या वृषभासुर, और एक वयमासुर। क्योंकि ब्रज के भक्त भगवान के राग आत्मिक हैं, ब्रजवासी जो वृंदावन में रहते हैं वो कृष्ण से स्वत ही प्रेम करते हैं। उनको न वेद के मार्ग से सिखाना पड़ता है, न धर्म की रीति से सिखाना पड़ता है, न कोई योग अभ्यास करके वो भगवान को पाते हैं। तो ये तीन चीजों की ब्रज में जरूरत नहीं होती, न धर्म की, न वेद की, न योग की। वह स्वत अपने आप में भगवान के साथ उनका राग आत्मिक प्रेम है। तो ये तीन असुर केसी हयग्रीव के नाम से वेद चुराने वाला घोड़ा है, इसको मार के भगवान ने ब्रजवासियों को वेद के नाम में विचलित करके कोई प्रेम भक्ति से पथ भ्रष्ट न करे केसी को मरवा दी, मार दिया। तो कोई कहे कि वेद में ऐसे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, वेद में नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी, कृष्ण से प्रेम करने वाले उससे ऊपर है। वैसे तो भगवत गीता में भगवान कहते त्रिगुण्य विश्व वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, ये वेद तो तीनों गुणों की बात करते हैं, ये ब्रजवासी तो भगवान के निज धाम से परिकर आते हैं। तो केशी वेद के नाम से कोई ब्रजवासियों के प्रेम में विचलित न करे। वयमासुर तो सब बच्चों को ले जाके गुफा में बंद कर लेता था, ये योगी है, योग के नाम में कोई ब्रजवासियों को भ्रमित न करे। और वृषभासुर बैल धर्म का प्रतीक है, तो धर्म के नाम में कोई प्रेमी भक्तों को विचलित नहीं करते। भक्त इन तीनों साधनों से ऊपर है, ये भक्तों से। इसलिए जब वृषभासुर कंस ने भेजा, ये सब योगी हैं, जितने कंस ने असुर भेजे हैं ये सब योग अभ्यास में इतने प्रवीण हैं, उनको सिद्धियां ऐसी हैं कि रूप बदल सकते। पूतना रूप बदल के आई ना, तो काम रूप ही नहीं थी, रूप बदल सकती थी। तो ये सब योगी थे, इनके पास कितनी सिद्धियां थी। और योगी भी असुर, इसलिए कहते हैं वेदांत भी असुरी वेदांत होती है। हिरण्यकश्यप कैसा प्रवचन करता है अपनी मां को, वेदांत का प्रवचन कर रहा है। कंस कैसा प्रवचन करता है देवकी और वसुदेव को, जब आठवीं देवी ऊपर आ गई तो बड़ा, इसको कहते हैं असुरी वेदांत। वेदांत बोलते हैं ठीक ठीक, लेकिन है असुर। तो ऐसे असुरी योग, योग भी असुर, असुरी योगी है, उनके सिद्धियां हैं, रूप बदल सकते हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं। तो वो बेल के रूप में आया, वो अरिष्टग्राम, अभी भी अरिष्टग्राम, मथुरा से गोवर्धन जाते हैं तो बीच में अरिष्टग्राम आता है। तो वो बेल राधा, असल में रूप गोस्वामी पाद तो उपदेशामृत में लिखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रजमंडल मथुरा मंडल महान है कि भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। मथुरा मंडल में वृंदावन अति आराध्य है, जहां भगवान ने दिव्य बाल लीलाएं की हैं। वृंदावन में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको भगवान ने अपने कर कमलों पर धारण किया है। और गोवर्धन के अंतर्गत भी राधा कुंड, वो तो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी से अभिन्न है। ऐसे क्यों लिखा है, क्या इसमें अंतर क्या है? वृंदावन में भी भगवान की रास लीला होती है, वो महारास होती है, उसको पंचायती रास कहते हैं। उसमें सब प्रकार की गोपियां भाग लेती, सुपक्षीय गोपियां, विपक्षीय गोपियां, मध्यस्थ गोपियां, ये सारी उसमें भाग लेती। तो उसमें राधा रानी को आनंद नहीं आता। गोवर्धन में भी रास होती है, वहां केवल सुपक्ष गोपियां ही आती, विपक्ष गोपियां वहां नहीं आती, लेकिन वहां सखा आते हैं, वहां वरिष्ठ ब्रजवासी आ सकते हैं। लेकिन राधा कुंड के ऊपर केवल कृष्ण और सुपक्षीय गोपियों का ही संग होता है, और कोई दूसरे भाव का वहां आता ही नहीं है, इसलिए वो राधा रानी से अभिन्न है। ये रास भी अलग स्थानों पे अलग भाव से होती। तो विशेष उस क्षेत्र में रास विहार हो रहा था, मतलब केवल राधा रानी के पक्ष की गोपियां ही थी और कोई नहीं था। सुपक्षीय विपक्षीय मध्यस्थ, तीन चार, कितने चार प्रकार। ये पहला श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण में, कि अलग अलग प्रकार की गोपियों का समूह है। जैसे सुपक्षीय विपक्षीय मध्यस्थ और चौथा भी एक है, और बैल कितना बड़ा था, असुर था उसका, जो ऊपर कुकुद्दी कुकुंबी कुकुद्दी कहते हैं, हंप कुंभ क्या अंब, हम थंभ बोलते हैं, हम थंभ बोलते हैं थंभ। एक बार ऊंट ने, जब सब पशु बन रहे थे तो पशु के ऊपर तो लोग भार, गधे के ऊपर भार डालते हैं ना, बैल के ऊपर भार डालते हैं, तो ऊंट को बनाते हुए ब्रह्मा को ऊंट ने कहा, ये लोग बड़ा मेरे से अन्याय करते हैं, तुम बीच में ऐसे खंभा बना दो तो कोई भार नहीं रखेगा। बोला ठीक है, खंभा बना देते हैं। लोगों ने कहा पहले दूसरों को बांधना पड़ता, खंभा ऐसा है कि डंडा भी नहीं डालना, दोनों तरफ बाल डाल दिया। ऊंट बुद्धिमानी की ऊंट ने, लेकिन लोग उससे डबल बुद्धि माने। भाई दूसरों को बांधना पड़ता, उसमें बांधना ही नहीं, कुछ बीच में ऐसे रख दो तो अपने आप खड़ा रहेगा। तो जो ऊंट का ऊपर का और ये इस बैल का जो ऊपर का था, वो ऐसे लगता था कोई चट्टान हो और ऊपर से बादलों को छुआ और पूछ ऊपर करे है, ये वृषभासुर तो बादल हिल जाए और सांस ले लगता है तूफान आ रहा है। ऐसे तो लिखा है कि ब्रज में वो जब बैल रंभने लगा तो गर्भवती गायों के बच्चे गिर गए, इतना भयभीत वातावरण हो गया अचानक। तो ब्रज में भय आता है तो सभी भगवान को बुलाते, कृष्ण कृष्ण। तो भगवान कृष्ण चिंता मत करो, एक सखा के कंधे के ऊपर हाथ रख के ऐसे खड़े, वैसे खड़े ऐसे होते हैं जैसे खड़ा हुआ नहीं जाते, थके हुए सहारा लेते हैं, किसी न किसी का सहारा लेके खड़े होते हैं, उनको इसमें अच्छा लगता है। और ये वृषभासुर सामने आया मारने के लिए, जैसे दौड़ा तो बड़ी फुर्ती से दोनों सिंहों को पकड़ लिया और ऐसे धरती में मारा, बहुत धक्का लगा, उठा फिर और फिर आक्रमण किया, तो पूछ को पकड़ा, टांग से पकड़ा, घुमाया और मार दिया। बहुत लंबा लिखा है, हमको तुम पहले ही मरा हुआ है, अब क्या मारना है। असुर का तो संहार हो गया। ऐसे तो वत्सासुर को भगवान ने वृंदावन में पहले वत्सासुर को मारा है, वत्सासुर को मारा तब भी गोपियों ने कहा कि है तो बछड़ा ना, बोला असुर देखो गिरा है ना, ये कपित पेड़ की इसको जड़ में मारा है, देखो इतना बड़ा असुर निकला। बोला असुर आया तो बछड़ा था ना, नहीं नहीं आपको तो पवित्र होना पड़ेगा। तो भगवान ने अपनी वेणु से वहां कुआं बनाया, उसको वेणुकूप कहते हैं। ये लीला कहां हुई, भांडिर वन में। भांडिर वन में वो कूप भगवान ने बनाया, वेणुकूप, उसमें प्रयागराज का आह्वान किया और प्रयागराज वहां प्रकट हुए और वहां भगवान ने उसमें स्नान किया। वो कूप वहां अभी भी है, बीच में वो कूप तो लुप्त हो गया था, उसमें स्नान करना त्रिवेणी स्नान के समान है। और अमावस के दिन तो इतनी भीड़ होती है कि अंदर से कीचड़ तक निकलती है, तब भी लोग नहाते हैं उसमें। सोमवार की अमावस आ जाए, अभी एक आई थी, पूरा वृंदावन के भक्त गए थे वहां। तो ये कूप कुछ समय के बाद तो लुप्त हो गया था, वज्रनाभ ने जैसे बनाए थे पहले ये सब लीला स्त्रियां। तो एक नारायण भट्ट हुए बहुत बड़े, जैसे हमारे छह गोस्वामियों ने पूरे ब्रज की लीला स्त्रियों को पुनः निर्मित किया, तो नारायण भट्ट के द्वारा भी बहुत अच्छी लीला स्त्रियों का। तो अंत समय जब उनका था तो उन्होंने कहा त्रिवेणी स्नान करूंगा। कहा महाराज आप तो कभी ब्रज से बाहर गए नहीं हो, आप प्रयाग कैसे जाओगे। बोले सारे तीर्थ ब्रज में है, वेणुकूप के वहां। बोला इधर खुदाई करो, तो ये जो अभी बना है ये नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा दोबारा पुनः इसका जीर्णोद्धार होके ये अभी कूप दोबारा प्रकट है। तो वृषभासुर को वध करने के बाद तो उसका उद्धार हो गया, लेकिन राधा रानी कहती है कृष्ण बैल को मारा है, गौ वंश की हत्या की है, पवित्र हो जाओ, जाओ तीर्थ यात्रा करो। सब तीर्थ यात्रा करो, हां तीर्थ यात्रा करनी, दो तीर्थों को यहां बुलाता हूं। भगवान ने एक तीर्थ का नाम लिया, सारे तीर्थों में करे हो गए। और भगवान ने तो अपनी खड्डा खोदा और सारे तीर्थ उसमें आ गए। भगवान ने उसमें नहाया, बोला मैं नहा लिया, ये तीर्थ है क्या पता है कहां से पानी आया, कौन इसको मानता है, हम नहीं नहाएंगे इसमें, हम अपना कुंड। तो भगवान ने कहा अभी आप नहाओ, भाई मैं तो नहा के पवित्र हो गया, लेकिन आपने असुर का पक्ष लिया, वृषभ था तो असुर ने असुर का पक्ष लिया, आपको नहाना पड़ेगा, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने अपने चूड़ियों से कंकन से कुंड बनाया, पानी तो अंदर आया नहीं, पानी कहां से लाओगी, बोला मानसी गंगा से लाएंगे। सारी गोपियां लाइन में खड़ी होगी, मटके भर के भरने लगी अपना पानी लाए। तब भगवान श्री कृष्ण सब तीर्थों को कहा कि आप श्री जी को प्रार्थना करो कि आपको स्वीकार करे सब तीर्थ। मैं भोगवती हूं, मैं जमुना हूं, मैं गंगा हूं, मैं गोदावरी हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं प्रयागराज हूं, ऐसे सब तीर्थ खड़े होकर सामने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे ऊपर कृपा करो श्रीमती राधिका, हमारे को आपके कुंड में प्रवेश करने की अनुमति दो। तो राधा रानी करुणा किया तो श्याम कुंड से जल बह के राधा कुंड में आया। तब राधा रानी ने कहा अब जो कृष्ण कुंड में नहाएगा श्याम कुंड में उसको भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, और कृष्ण ने कहा जो राधा कुंड में नहाएगा उसको युगल प्रेम और सेवा की प्राप्ति होगी। तो ऐसे दो कुंडों का निर्माण आज के दिन हुआ, और आज के दिन राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। वैसे सात बार श्रीला प्रभुपाद ने उपदेशानंद में स्नान करने का वर्णन किया है कि एक बार स्नान करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन जब स्वयं श्रीला प्रभुपाद अपने भक्तों के संग वहां गए तो भक्त अभी तक सिद्धांतों में पक्के नहीं थे, अंदर जब गए तो तैरने लगे। तो प्रभुपाद का तत्काल बाहर आ जाओ, ये राधा रानी का प्रेम का स्वरूप है, ये कीड़ा के लिए नहीं है, ये केवल कृष्ण के जल विहार के लिए है। आपको तो पांव अंदर रखने से पहले भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर कृपा करो करुणा, नहीं तो मट लोटे से लेके आचमन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब परिक्रमा में आए थे तो किसी ने स्नान नहीं किया था, सबने आचमन किया था, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी, जैसे प्रभुपाद ने बड़ी उदारता से सबको कृष्ण प्रेम दिया है, भक्ति दी है, हरे कृष्ण महामंत्र बगैर किसी भेदभाव के पूरे विश्व में दिया है, फिर भी स्नान की अनुमति देने के बाद भी कहा कि नहीं आप अभी इस प्रकार स्नान करने अपराध है राधा कुंड का, प्रणाम करके आचमन करो, लोटे में बाहर स्नान कर लो, अथवा अगर गुरु की अनुमति है तो प्रणाम करके खड़े होकर दो डुबकी लगा के ऐसे ही बाहर निकलना है, इतने से ज्यादा कोई, जैसे अन्य स्थानों में कोई स्विमिंग पूल वाला मन में भाव लाना अपराध हो जाता है। ये राधा कुंड तो इतना छोटा सा था, जो वज्रनाभ ने बनाया था वो भी वज्र कुंड नीचे छोटा था, बाद में बहुत बड़े भगवान श्रद्धालु भक्त भगवान के उन्होंने इनका सुंदर निर्माण किया, फिर ऊपर चलने की जगह फिर घाट बनाए। विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन स्थली राधा कुंड रही, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से एक गिरिराज शिला दिया, एक गुंज माला दिया। वो तो ब्रज में 16-17 साल तक महाप्रभु के संग में रह के, महाप्रभु जब अपने स्वधाम चले गए स्वरूप दामोदर, जिनको उनका संरक्षण के लिए उनके शरण में दिया था, उन्होंने भी महाप्रभु के विरह में अपना सारी शरीर त्याग दिया, नित्य लीला में चले गए, तो बड़े विलाप करते हुए वृंदावन में आए। तब रूप और सनातन गोस्वामी ने उनको गले लगाया कि आप ही धरोवर हैं महाप्रभु के अंत्य लीला की, जो आपने अपने आंखों से देखा है, गोवर्धन से कूद के जमुना में डूबने की विचार को त्याग दो और रोज हमको गौर कथा सुनाओ। विदुर ने नीति शास्त्र में लिखा है कि एक जिसके पास धन हो और दान नहीं करता हो उसको गले में पत्थर बांध के जमुना में डाल देना चाहिए, ये विदुर नीति है। धन हो और दान नहीं करता हो तो बोले डालो जमुना या गंगा में, कम से कम तरे तो सही लेकिन पत्थर बांध पे। और दूसरा किसको, बोला गरीब हो और भजन नहीं करे तो उसको भी पत्थर डाल के अंदर डाल दो। अरे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो भगवान का भजन करो ना, गरीब भजन न करता हो तो पत्थर डाल के नदी में डाल दो गंगा में, और साहूकार धन हो और दान न करे तो उसको पत्थर डाल के नदी में डाल दो। इतने अभी क्यों नहीं डालते इतने कि फिर नदी में पहले ही पानी नहीं है। ये विदुर नीति का श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे, वैसे ये राधा कुंड तो लुप्त ही हो गया था जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले ब्रज में आए, तो यहीं अरिष्ट ग्राम में तमाल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सामने दो खड्डे पानी के कीचड़ जैसे और धान चावल का बोया हुआ था। महाप्रभु सबसे पूछ रहे थे कि कहां है श्याम कुंड राधा कुंड, तो गांव वाले कहते हैं गोरी कुंड, एक काला कुंड है एक गोरा कुंड है, एक तो यहां गोरी कुंड काला कुंड है, तो गोरी कुंड राधा कुंड को कहते थे गांव वाले और काला कुंड कृष्ण को कहते हैं। तो महाप्रभु को उधर स्फूर्ति हुई कि यही राधा कुंड, ऐसे करके उस कीचड़ वाले पानी में नहाने लगे। तब इसकी फिर पुनः पता लगा कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पानी के खड्डे ही थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन कर रहे थे तो उनके मन में एक दिन ऐसा संकल्प हुआ कि महाप्रभु ने तो वैसे ही गोस्वामी को कहा है कि तीर्थ स्थल जितने भी भगवान के लीला स्थलियां हैं जो वज्रनाभ के द्वारा निर्मित हुई थी उन सबका पुनः प्रकाशन करो, सब शास्त्रों के अंदर से भक्ति की महिमा को और भक्ति की परम चरम सीमा को प्रकाशित करो, वैष्णव आचरण और सिद्धांत को प्रकाशित करो कि वैष्णव को जीवन कैसे होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संग में ये निर्मित किया और भगवान के दिव्य विग्रह उनके लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करो, ये चार आदेश महाप्रभु ने दिए थे। तो जैसे मंदिरों का निर्माण तो गोस्वामी ने किया, लेकिन राधा कुंड भी राधा रानी के विग्रह से अभिन्न है तो इसका भी सुंदर निर्माण होना चाहिए। मन में ये विचार तो आया लेकिन पर कहा कि हम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां भजन करने आए, फिर ईंट पत्थर का कौन सरमारी करेगा। मन से ध्यान निकाल दिया। एक संपूर्ण, मेरे ख्याल संपूर्ण है कि नाम क्या है उसका, कोई बड़ा धनी सेठ जिसकी इच्छा पूरी की बद्रीनाथ चला गया, बद्रीनाथ की सेवा की, बद्रीनाथ में रहा। संपूर्ण है कि ऐसे कुछ नाम, किसी को नाम याद है संपूर्ण सेठ, संपूर्ण संपूर्ण सर्वण एस एस से कुछ नाम है। तो रात को बद्रीनाथ उनके स्वप्न में कहा कि आप जो धन राशि मुझे यहां देने आए हैं इसको ले जाओ और अरिष्ट ग्राम में दास गोस्वामी को इस दो उनको सेवा करनी है। वो बेचारा वहां से आया, उस जमाने में पैदल जाते थे, फिर यहां से मथुरा गया, मथुरा से पता करके दास गोस्वामी का पता किया, बोला ऐसे बद्रीनाथ ने मुझे आदेश दिया है ये धनराशि लीजिए आपको सौंप दो। मैं तो धनराशि को क्या करूंगा। तब जीवा गोस्वामी थे, जीवा गोस्वामी को बुलाया, जीवा गोस्वामी ने उस धनराशि के द्वारा जो भी नेम थे पूरे करके और ये राधा कुंड का ऐसे निर्माण किया। तो कहते हैं बद्री का आश्रम में वैसे भी भगवान ने उद्धव अपने प्रतिनिधि को भेजा है और बद्रीनाथ बद्री नारायण भारतवर्ष का आराध्य देव है और भारतवर्ष तपोभूमि है और वृंदावन तो भगवान का निज धाम है। तो भगवान बद्री का आश्रम में रहते हुए भी इस विशेष राधा कुंड के निर्माण के लिए क्या संबंध कितना आपस में है। और वैसे गोवर्धन मोर के आकार का है और उसकी दोनों आंखें राधा कुंड और श्याम कुंड को माना जाता है कि ये भगवान ये गोवर्धन की दो आंखें हैं। और राधा कुंड के तट के ऊपर दास गोस्वामी ने राधा कुंड अष्टकम लिखा है। उस अष्टकम में एक आखिरी लाइन आती है तदतीशुरभि राधा कुंडम एवाश्वर्यो मे। ऐसे सुरभि राधा कुंड के तट पे मुझे निवास मिले, ये अष्टकम पूरा दास गोस्वामी ने गाया, राधा कुंड अष्टकम। आज कोई इसको पढ़े गाए तो अच्छा है। अब पहले श्लोक को हम देखते हैं, श्री राधा कुंड अष्टकम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। विशर्भ धनुजनसम नारम धारम कोटि रंगैहि निखिल निज सखीभिर यत स्वहस्तेन पूर्णम प्रकटितम अपि बिन्दारण्यः लग्न प्रमोदैः तदतीशुरभि राधा कुंडम एवाश्रयो मे। अष्टासुर के उधार के बाद श्रीमती राधा रानी और सखियों ने के बीच में जो वार्तालाप हुई हास्य में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए, क्योंकि वृषभ को मारा था तो वृषभानु दुलारी के कहने के ऊपर उन्होंने ये राधा कुंड का निर्माण किया अपने हाथों से, और उसमें वो राधा कुंड जो सुर भी है बड़ा सुगंधित अति आनंदमय है, वो मुझे अपने अपने यहां निवास स्थान दे। ये दास गोस्वामी का भाव है। व्रज भुवे मौर संत्रोह प्रेयसीनम निकमहे। मिल गया सो गाने वाला तो कोई अच्छा भाव हो जिसको सुर हो गाए। ये तो राधा कुंड कल्प वृक्ष जैसा है, तो हृदय है, ये प्रेम का स्थान है। वो तो भगवान के द्वारका की रानियों को भी प्राप्त नहीं है, वो सुंदर राधा कुंड मुझे शरण दे। ऐसे राधा कुंड का अष्टकम जैसे हम यहां रोज दामोदर अष्टक गाते हैं, ऐसे राधा कुंड अष्टकम है। अब यहां ही बैठे बैठे राधा कुंड का ध्यान करके प्रणाम करके उसका स्नान कर लो, और कोई वहां से जल लाएगा, कोई गया होगा कल लाएगा। वैसे भाव जनार्दन भाव ग्राही है, यहां बैठ के भाव से भी ध्यान करके प्रणाम करके प्रार्थना करके राधा रानी को कि हम जहां भी हैं ये विश्व तो सारा भगवान से बाहर है नहीं, ये तो भगवान के उदर में पड़ा है। ये राधा रानी राधा कौन का जल आ गया अपने संकल्प किया तो जल नहीं आ गया, हो गया स्नान सबका स्नान, राधा कुंड का स्नान हो गया भाई। भाव से ही भगवान के घर में राधा कुंड, ये तो सबका इसमें हो जाएगा। तो श्री श्री राधा कुंड आविर्भाव महा महोत्सव की, श्री श्री राधा राधिका रमण की, राय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।